ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज 24 जून है और हमने ये सीरीज चालू की थी मम्मा की मधुर झनकार 23 मई को, और आज हम इस क्लास से इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। जैसे हम जानते हैं, आज के दिन 24 जून 1965 को मम्मा अव्यक्त हुए। तो पूरे महीने हमने मम्मा की विशेषताएं सुनी, मम्मा में क्या धारणाएं थी वो सुनी, भाई बहनों के अनुभव मम्मा के साथ, ये सब हमने सुना। और आज जस्ट जो लास्ट के कुछ पल थे वो सुनेंगे। और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 10 संदेश आए थे, लगातार 7 संदेश थे, उसके बाद 3 और संदेश थे, तो वो हम सुनेंगे आज। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 24 जून को, तब बच्चे थोड़े हलचल में आए थे और रो रहे थे। जो बहन मम्मा को देख रही थी वो रोते रोते बाबा के पास गई और उन्होंने कहा कि मम्मा चली गई, मम्मा चली गई। लेकिन बाबा ने उस बहन को कहा कि मम्मा तो शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई। तो बाबा की स्थिति बहुत अचल अडोल थी उस समय भी। और फिर मम्मा के शरीर को फूलों से सजाया गया, उसमें भी 5 कन्याएं थी, उनको ही कहा गया कि वही मम्मा की बॉडी को टच करेंगे और कोई नहीं। तो मम्मा को फूलों से सजाया गया, चंदन का तिलक लगाया गया। और ऐसे हुआ कि बाबा चाहते थे कि सारे बच्चे योगयुक्त रहे और कोई रोए नहीं, वातावरण खराब ना हो। तो उस पर भी बाबा ने सबको कैसे बनाए रखा। बाबा ने बच्चों से कहा कि देखो, अगर तुम योग में रहोगे ना तो हमारी मम्मा वापस आ जाएगी। और सारे बच्चे फिर सोचे कि अच्छा, योग करेंगे तो मम्मा वापस आ जाएंगी, और योग करने लगे। इसी तरह से सारे सेंटर्स पर मैसेज गया और सब लोग योग करने लगे। बाबा ने संदेश पुत्रियों को सामने बिठाया था और योग कर रहे थे सब। और बाबा कहते थे, जाओ जाओ वतन में देख के आओ कि कुछ धागा है जिससे हम मम्मा को खींच ले। तो संदेश पुत्रिया भी जाती थी वतन में और देखती थी और कहती थी, हाँ बाबा थोड़ा कुछ दिख रहा है। तो बाबा कहते थे कि हम रस्सी डाल के मम्मा को खींच लेंगे नीचे। तो इस तरह से बाबा ने सबको बनाए रखा। और फिर हॉल में बैठ के योग चला, और आधे घंटे के योग के बाद मम्मा की बॉडी को उठाकर बाहर लेके आए। तो बाबा ने भी कंधा देते हुए पांडव भवन के गेट तक आए, और उसके बाद 3 लाइनें लगी जिसमें सारे भाई बहनें अपने वाइट यूनिफॉर्म में थे। भाई आगे चल रहे थे, बहनें पीछे चल रही थी। और बहुत शांति से यहाँ से मम्मा को लेते हुए शमशान घाट गए। और ये देखकर जो माउंट आबू के लोग थे वो बहुत आश्चर्य हो रहे थे कि इतने सारे लोग और इतनी शांति थी। तो इस तरह से वो वहाँ पर पहुँचे। और फिर जो बॉम्बे से रमेश भाई जी ये लोग आने वाले थे वो भी पहुंचे डायरेक्ट वहाँ पर। और फिर मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया विश्व किशोर भाव जी ने। उसके बाद 7 संदेश चले। जो पहला संदेश है, गुलजार दादी जी द्वारा ये सारे संदेश थे। तो पहला संदेश था 26 जून को 1965 को, तो कुछ हम पढ़ेंगे। तो मम्मा शाम का समय था, हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जहां पहुंची, बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम करा रहा हूँ। हमने कहा, मम्मा, सबने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए, सब बहुत याद कर रहे हैं। माँ बहुत मीठी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बोला होगा मम्मा ने? ड्रामा की भाभी। और अभी मैं बाबा के पास हूँ, और आओ आओ आओ। गुलजार दादी गए थे ना वतन में, तो मम्मा ने कहा, बच्चे आप सब तो वतन बहुत बार आते हो, घूमते रहते हो, मैं आज आई हूँ तो लेने आई हूँ। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है, सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत याद प्यार देना। तो ये पहला संदेश था। फिर दूसरा संदेश नेक्स्ट डे था, 27 जून को। तो नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी मम्मा को अलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बातें करने में इतने मगन थे जो कुछ सेकंड तक हमें भी देखा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है, आज तो आप भोजन ही भूल गई ना। फिर माँ सुना रही थी कि बाबा आज मुझे कह रहे थे कि मामा आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। मैंने कहा, बाबा अभी तो मैं वतन में ही रहूंगी, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूँ वैसे आकारी वतन में आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। बस याद देते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा के नैनो रूपी दूरबीन में एक एक वत्सों की प्रेम संपन्न याद की मूरत बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नैन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ को कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेंगी? माँ बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी। तो यहाँ पर भी हम इस संदेश में देख रहे, जो हमने लास्ट एक महीने में देखा कि मम्मा कितनी आज्ञाकारी थी बाबा के प्रति, जो बाबा कहेगा वो मम्मा करेंगी। बाकी बाबा मुझे बहुत बहलाते हैं, वह कल सुनाऊंगी। अब तीसरा संदेश था 28 जून को। इस संदेश में बाबा मम्मा को सेंटर्स पर मम्मा को भेजा। फिर मम्मा मधुबन में भी आए, मम्मा ने मधुबन में बैठ के मुरली सुनी सब बच्चों के साथ। और इस संदेश में माँ के दो रूप दिखे, एक संपूर्ण मम्मा और एक साकारी मम्मा। तो आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। जब हम ये संदेश सुन रहे हैं तो हमको एक और चीज करनी है कि हम जब वतन में जाते हैं तो हम क्या क्या देख सकते हैं, वहाँ पे योग अभ्यास क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे इस वतन में बाबा, इस संदेश में बाबा कह रहे हैं वहाँ बगीचा है, तो जब हम बाबा को मिले वहाँ जाकर तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम बगीचे में बाबा के साथ हैं। जैसे इस संदेश में संपूर्ण मम्मा और साकारी मम्मा, तो जैसे बाबा कहता है ना कि आपका भी संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। जैसे ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बाबा क्या करते थे, संदेश पुत्री को बार बार वतन में भेजते थे और अपना संपूर्ण स्वरूप देखने के लिए कहते थे। तो ऐसे हम भी अपना संपूर्ण स्वरूप बार बार उस सूक्ष्म वतन में देखे। तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के दो रूप तो नहीं देख रही है, लेकिन नजदीक जाने से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स तो एक ही थे, ट्रांसपेरेंट दोनों थी, लेकिन दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहाँ कहाँ सैर किया। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए। वहां देखा कि क्या देखा होगा मम्मा ने सेंटर्स पर, सभी बच्चे मम्मा की याद में बैठे हुए। और तो कहा कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले थी, लेकिन माँ की याद का पल्ला भारी था। और क्या देखा होगा, क्योंकि मम्मा ने अभी शरीर छोड़ा था, तो गंगा जमुना बह रही होगी। और हाँ, उलाने दे रहे थे। अच्छा, तो कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए। कोई कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे थे, कोई हर्षित भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए। अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। देखा ये वाक्य कैसा है, बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था, है ना। वरना कोई माँ अगर अपने बच्चों के बीच में आएगी तो वो बच्चों को ही देखेगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, इतने दिनों के बाद देख रही हूँ। लेकिन मम्मा का देखो अटेंशन मुरली पर। लास्ट एक महीने में हमने कितनी बार सुना होगा कि मम्मा का मुरली पर कितना अटेंशन था। और मम्मा की जो एक शिक्षा थी उसमें मम्मा ने कहा था कि बाबा के मुख से निकली हुए वाक्य और आपके कान तक पहुँचने तक माया बीच में आ जाती है, इसलिए मुरली को बहुत ध्यान से और रूहानियत में और गंभीरता से सुनना है। ये मम्मा की शिक्षा थी। एक जगह तो कोई हर्षित भी थे और देख देख मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर माँ ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे, बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो अच्छे लगे वह तोड़कर खाओ। तो ये भी कर सकते। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जब साकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूँ? माँ बोली, कल ये सुनाऊंगी। माँ को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वो बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा कि आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है। तब चौथे संदेश में बाबा मम्मा को भक्तों के पास मंदिर में लेके गए। तो चौथा संदेश था 29 जून को। तो मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। भोग स्वीकार करने के बाद मम्मा से पूछा कि कल कहाँ कहाँ बाबा ने सैर कराई। माँ बोली, बाबा ने कहा आधे भक्त तेरे आधे भक्त मेरे। अब बताओ आपके भक्तों के पास ले चलूं या अपने भक्तों के पास? फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था वहां बाबा ले गए। वहां देखा तो बहुत भीड़ थी, भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था कि अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग कर दूंगा। बाबा बोले, मम्मा भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता, अब इनके सामने जाओ। मम्मा को कहा कि अब इनके सामने जाओ, वो भक्त के सामने। तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भक्त इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था और दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा उसके मस्तक पर हाथ धरो। तो हम सोच रहे थे कि हम भी ये योग अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे मंदिरों में जाके खड़े हो जाए। तो मैं जाए उसके आगे ठहरी, मस्तक पर हाथ रखा। वह ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वो ही काली अम्बा के रूप में आए खड़ी है। बस चेतन रूप में प्राप्त देख भक्त तो गदगद हो गया। तो मम्मा को बाबा काली के मंदिर में लेके गए। नेक्स्ट फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया जो अति नौदा भक्त थे, बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे। बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और माँ के बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया कि भले ही अब ये क्रिश्चियन है, लेकिन है भारतवासी पक्के भक्त, कोई हिसाब के कारण वहां जन्म मिला है। कल जो पूछा था कि अंतिम समय आपको महसूसता थी या नहीं, उस पर मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले ऑलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी, तो उस लास्ट मिलन में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठा था कि अब मुझे जाना है। तो 4 दिन पहले ही मम्मा को पता चल गया, लेकिन 1% ना का था, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अब जाने की बात ही नहीं। सोचो तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है आदि आदि। लेकिन इस बारी जब हमने पूछा कि बाबा कब तक और कितना समय ये हिसाब किताब है, तो बाबा बोले, बाकी थोड़े समय का ही है, अब जल्दी ही अंत होना है। और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गृह रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म वतन में चलेगी, वहां चल खेलेगी बहलेगी। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ती हुई देख और भी पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था कि जैसे श्वास खींच रहे हैं। 2 घंटे पहले मेरी शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी और पक्का समझ में आ गया था, लेकिन मैं बोलूं ये संकल्प नहीं था। आखिर कुछ सेकंड में ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि देह में हूं, लेकिन देह से न्यारापन का, साक्षीपन का, अशरीरी कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। तो मम्मा को न्यारापन का, साक्षीपन का, अशरीरिक कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। ये संकल्प ही बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रही हूँ। और क्या कर रहे थे इस सुनने से भी मैं परे थी। अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा जरूर, लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकारी शरीर की भासना नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? माँ बोली, हाँ बाबा ने सारी सीन ऐसे दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी हो देख रही थी। अब ये भी एक योग अभ्यास है कि हम अपने ही शरीर को साक्षी हो देखे, है ना। कभी कभार वैराग्य आने के लिए एक अभ्यास बताते हैं ना कि अपने ही शरीर को जलता हुआ देखो, अपने ही शरीर को शमशान घाट में देखो, तो कितना वैराग्य आएगा। तो ये एक योग अभ्यास है। साथ में आप बच्चों के दृश्य को भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं। तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारे जो मित्र संबंधी है वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे सबकी स्थिति है। ये एक योग अभ्यास इसमें से। फिर पांचवा दिन, ये था 29 जून को। तो आज वतन में भोग स्वीकार करने के बाद माँ ने सब बच्चों की याद में हमको गिट्टी खिलाई। बाबा बोले कि बच्चे समझते हैं कि माँ से हमको ही प्यार है, लेकिन बाबा का भी तो मम्मा से प्यार है, इसलिए वतन में बुला लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे समझते हैं कि माँ हमें भूल गई है, लेकिन नहीं, माँ तो अब भी बच्चों की सेवा में है। साकार में तो जहाँ रहती थी वहाँ ही सेवा कर सकती थी, लेकिन अब तो जहाँ चाहे एक सेकंड में वहाँ पहुँच सकती है। मम्मा बोली, जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस करेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। मम्मा ने एक दो जगह बोला ये चीज़ कि मम्मा बोली, जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस करेंगी कि माँ सेवा कैसे कर रही है। इन तीन दिनों में बच्ची को सूक्ष्म में सेवा कैसे की है वो आगे सुनाऊंगी बच्चों की। उसके बाद हमने पूछा, आपका जब आह्वान कर रहे थे तो उस समय आपको क्या अनुभव होता था, मम्मा को क्या अनुभव हो रहा था जब सारे बच्चे योग में थे और मम्मा को बुला रहे थे। तो दादी मम्मा से पूछ रही है कि क्या अनुभव हो रहा था उस समय। तो मम्मा बोली, आप सबके योग के आह्वान का प्रभाव पहुंच तो जरूर रहा था, लेकिन मेरा तो इस शरीर से संपूर्ण ही संबंध टूट चुका था, इसलिए फिर से वापस कैसे आ सकती थी। भले ही खींच होती थी और ऐसे महसूस होता था जैसे कोई चीज को अनेक चीटियां, जैसे कोई चीज को अनेक चीटियां चटक जाती है और घसीट घसीट कर ले जाती है। तो मम्मा को ऐसे महसूस हो रहा था, वैसे सूर्य की किरणों समान माइट की तारे हम आत्मा को आकर्षण कर घसीट रही थी, लेकिन कर्म बंधन खत्म होने के कारण संकल्प ही नहीं उठता था कि जाना है, तो कर्म कैसे हो सकता था। फिर मम्मा ने सुनाया कि सारी रात जब आह्वान कर रहे थे तो बीच में दो बार, सारी रात जब बच्चे आह्वान कर रहे थे तो बीच में दो बार बाबा ने मुझे इस शरीर में चक्कर लगाकर आने के लिए भेजा था कि अनुभव करो कि शरीर के बंधन वश आत्मा का क्या हाल होता है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा इस उसी शरीर में जब जाती है तो कैसे अनुभव होता है, वह अनुभव करके आओ। तो बाबा ने मम्मा को भेजा था जब रात में यहाँ भट्टी चल रही थी और सब योग कर रहे थे। भले ही दो बार आई लेकिन ऐसा लगा, देखो ये इम्पोर्टेंट वाक्य, भले ही मम्मा दो बार आई बट ऐसा लगा जैसे कि कोई पराई जगह पर, जैसे कोई पराई जगह चक्कर लगाकर आई हूँ, और शरीर बहुत ठंडा हो चुका था, इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई लेकिन चुरपुर नहीं हुई। बाकी मैं आकर देख गई थी, बाकी मम्मा कह रही है मैं आकर देख गई थी। इस पर हमने कहा, और मम्मा को दादी ने कहा, जाते जाते हम सबको 4 से 5 बजे तक 2-3 बारी चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक सी महसूस हुई कि माँ आई है और सबसे मिल रही है, ऐसी रू रिहान कर स्थूल वतन में लौट आई। तो ये हुआ पांचवा दिन का संदेश। फिर छठा दिन 30 जून, आज जब हम गई तो माँ साकार बाबा से मिलकर लौटी थी और ऑलमाइटी बाबा को समाचार सुना रही थी। हमारे पहुंचते ही मम्मा ने खुद ही बच्चों की याद प्यार का समाचार पूछा और बोली, देखो मैं साकारी रूप के बजाय अब सूक्ष्म रूप में मददगार हूँ। बच्चों को मेरा यही संदेश देना कि अगर माँ से प्यार है तो माँ का यही कहना है कि साकार में साकारी बाबा के मददगार तो अब तुम बच्चे ही हो, तो पूरे मददगार हो चलते चलना और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा मेहनत नहीं लेना, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा मेहनत नहीं लेना। अब तो इस पाठ से जान गए होंगे कि समय बहुत नज़दीक आ रहा है। ये 65 की बात है जो मम्मा कह रहे हैं कि समय बहुत नज़दीक आ रहा है, ना सिर्फ विनाश का लेकिन साथ साथ प्रभाव प्रत्यक्षता का समय नज़दीक आ रहा है। इसलिए अपने को संपूर्ण बनाने में तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। फिर हमने पूछा कि मम्मा सूक्ष्म में हम बच्चों की कैसे सेवा करती है। इस पर माँ समझा रही थी कि अब स्थूल शरीर से तो पाठ खत्म हुआ, अब तो रहा रूहों का रूहों के साथ संबंध। तो जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी, इसी रीति यहाँ भी अभी हर बच्चे की रूह को इमर्ज कर उनके जो कड़े संस्कार है उन्हों को योग शक्ति रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। तो मम्मा हम सबको इमर्ज करती है और योग शक्ति रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा करती है हमारे संस्कारों को। ऐसे नहीं कि मुझे सब भूल गया है, नहीं, सब बच्चों का नक्शा हमारे सामने है और अमृत वेला हर रूह को इमर्ज करती रहती हूँ। लेकिन तुम बच्चे भी जब रूह रूप में होंगे तब इस रूहानी सेवा की महसूसता कर सकेंगे। जब तक रूह रूप में स्थित ना होंगे तो अनुभव ही नहीं कर सकते। तो ना चाहते भी माँ की याद तुम्हें रूह के रूप में स्थित कराएगी और योग युक्त देही अभिमानी बनाएगी। उन्हों को अनुभव प्रैक्टिकल में होगा कि माँ हमसे बोल रही है, मिल रही है, ये बोल रही है। इसके बाद माँ ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला, मम्मा ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला, उसमें ज्वेलरी का सेट भरा हुआ था। वो ऐसा अनोखा व अलौकिक था जिसको कब देखा ही नहीं था। माँ बोली, देखो मैं सारे दिन इन्हीं दिव्य गुणी रूपी गहनों से आप बच्चों को सजाती रहती हूँ, यही माँ की सेवा है। तो मम्मा क्या कर रहे हैं हमारे लिए, सूक्ष्म रूप से सेवा कर रही है, हमारे एक एक कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने की, भस्म करने की सेवा। और दूसरा मम्मा ने कहा कि गुणों से सजा रही है मम्मा हमको। तो ये छठा संदेश था। फिर सातवां संदेश 1 जुलाई, आज वतन में माँ से मुलाकात करते समय समाचार की लेन देन करने के बाद माँ बोली कि बाबा हमें वहां ले चला जहां विनाश की तैयारियां हो रही थी। वहां बहुत नाजुक हथियार तैयार पड़े हुए थे, साथ में मार्शल लोग प्लान बनाए तैयार हुए खड़े थे। सिर्फ 1 सेकंड की देरी है ऑर्डर मिलने की व शुरू करने की। तो बाबा ने कहा, ये विमान इसलिए दिखाए हैं कि देखो एक तरफ विनाश की तैयारियां, दूसरी तरफ फिर स्थापना के निमित्त आपकी शक्ति सेना की स्थापना की तैयारियां कहां तक है। तो स्थापना और विनाश की तैयारियों में दिन रात का फर्क था। इस पर मम्मा सुना रही थी कि देखने में ऐसा आता है कि अब बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से तीव्र नहीं होगा, लेकिन एक तरफ कुछ विनाश की रिहर्सल, दूसरी तरफ फिर अब प्रभाव का भी समय नजदीक आ रहा है, तो उसमें बच्चों की बुद्धि बिजी हो जाने से पुरानी बातें व पुराने संस्कार मिट जाएंगे। अब भले बच्चे कहते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन सबकी बुद्धि बिजी नहीं है। भले मुख बिजी है लेकिन बुद्धि बिजी होनी चाहिए,
भले मुख बिजी है लेकिन बुद्धि बिजी होनी चाहिए। बाद में फिर बाबा ने एक गुह्य रहस्य सुनाया कि देखो विनाश का कार्य अब क्विक चल रहा है, एक सेकंड में बुद्धि को टच कर कार्य करा लेते हैं। इस ही रीति से अब स्थापना का कार्य भी जल्दी जल्दी होना है, इसलिए मम्मा को भी सूक्ष्म वर्तनवासी बनाया हूँ ताकि वह भी बुद्धियों को प्रेरित कर स्थापना का कार्य जल्दी करा सके और प्रभाव निकल आए। इस प्रकार थोड़े समय में तुम बच्चे अंतवाहक शरीर द्वारा अंत प्रेरणाओं से ही से की हुई माँ की सेवा का प्रभाव देखते जाएंगे। इसमें से हम मेन मेन चीजें पढ़ेंगे। ये तो बच्चों को बतलाया है कि अम्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास रहने वाली है। बाबा को बुलाया, पूछा था कि इनको तो हमारे साथ अंत तक चलना था, फिर आपने इनको अपना साथी बना लिया। बाबा ने बोला, ड्रामा में जो नोंद है सो तो होगा ही। बाबा का यही उत्तर होता है, मुझे इनसे बहुत काम कराना है, इनका जो हिसाब किताब था वो भोगना से चुकतू हो गया, ये तो हमारा राइट हैंड है। बच्चों को मम्मा आकर सारा समाचार सुनाएगी कि अंत में क्या हुआ, कैसे चली गई, सब सुनाएगी। आत्मा को सब मालूम है ना, मम्मा को बहुत अच्छी लिफ्ट मिली है, इसमें तो और ही खुश हो जाना चाहिए। फिर आगे मम्मा ने कहा, अंत समय में कुछ समय पहले कष्ट कम महसूस होने लगा था और अशरीरी कर्मातीत अवस्था का इस शरीर में होते हुए भी कुछ सेकंड अनुभव हुआ था और उसी अंत मते के हिसाब से कर्मातीत अवस्था की गति प्राप्त हुई। अंत के समय का यही अनुभव है। अब निर्मोही अनासक्त कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त होकर साकारी दुनिया की सेवा में शिव बाबा के साथ उपस्थित हूँ। फिकर की कोई बात नहीं, हम बहुत राजी खुशी में हैं और आपके साथ हैं। इसलिए आप सब भी जल्दी जल्दी अनासक्त अंतर्मुखी और अचल स्थिति को प्राप्त करो। अनासक्त अंतर्मुखी अचल स्थिति को प्राप्त करो और अपने राज्य की स्थापना के कार्य में मददगार बनते चलते चलो। ये 7 संदेश हुए। उसके बाद 6 जुलाई को संदेश था, जब 12 दिन हो चुके थे और मम्मा की पदरामणी हुई। उस पर मम्मा ने कहा, सूक्ष्म वतनवासी माँ बोली, सबकी सेवा के साथ साथ शिव बाबा के साथ विनाश की तैयारियों का भी साक्षात्कार कराते रहते हैं। जो अनन्य भक्त है उनके पास भी जाते रहते हैं और आप वत्सों की भी रूहानी सेवा करते रहते हैं। यहाँ अंत समय प्रभाव निकलने के निमित्त जो व्यक्ति है उनका भी इन एडवांस साक्षात्कार करते रहते हैं। अंत प्रेरणा से अंतवाहक शरीर द्वारा उनकी बुद्धियों को प्रेरणा की सेवा चलती रहती है। फिर नेक्स्ट संदेश में मम्मा ने कहा, मेजॉरिटी सब में उमंग है कि जैसे हमारे मम्मा बाबा का यादगार रहा वैसे हम भी कर्तव्य करें। इस पर मम्मा ने कहा, यादगार अपना कायम कैसे होता है, अपना यादगार कैसे कायम होता है, याद स्वरूप में रहने से। क्या मुख्य ध्यान ध्यान में रखे जो हमारा यादगार कायम करे कायम रहे। तो मम्मा बाबा ने क्या किया जो यादगार रहा। मम्मा ने सुनाया, जो जितना जितना याद में रहकर के कर्म करता उसका यादगार बनता है। याद में रहकर कार्य नहीं करते तो नहीं, तो याद का फल बनता है यादगार। याद में रहना है तो याद में भी जितनी स्टेज और परसेंटेज रहेगी उतना यादगार बनेगा। याद में जितना समय रहेंगे जितनी स्टेज रहेंगी हमारी उसकी भी परसेंटेज है तो उसके अनुसार यादगार बनेगा। जैसे कोई कोई आत्माएं ऐसी स्टेज वाली है, अभी अभी याद रहे और अभी अभी भूली। फिर ये लास्ट संदेश है, इसमें बहुत सारी मम्मा की शिक्षाएं है हमारे लिए। ये 22 जुलाई को लास्ट संदेश था, इस पे गुरुवार था और 3 बहनों को बाबा ने बिठाया और फिर मम्मा की पदरामणी हुई और फिर मम्मा चलते हुए अपने कमरे में गई और मम्मा फिर भंडारे में आई। भंडारे की तरफ मम्मा चली। वहां भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। तो ब्रह्मा भोजन पर मम्मा ने ध्यान खिंचवाया। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ से बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, तो ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है, ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। ये बाबा की दुकान है, यहाँ बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बाबा की दुकान है। दुकान कौन सी? मधुबन सेंटर्स, है ना। सच्चाई से और ईमानदारी से सेवा करनी है, डायरेक्ट बनाना है। ये देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। दिखावे से सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है। जब हम समझेंगे ये मेरा घर है, तो हम उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उतनी जिम्मेदारी से हम सेवा करेंगे। यहाँ ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है, फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते हैं। लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। जिसका एक अथक बाप से बुद्धि योग है, वह कब थक नहीं सकता। बाबा अथक है, देखो ये लाइन कैसी है, बाबा अथक है, जिन्हों का बुद्धि योग अथक के साथ है वो कभी थकेंगे नहीं। बाबा अथक है, जिन्हों का बुद्धि योग अथक के साथ है और कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ को मेरा समझ, यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्या, इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वह जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते हैं, तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है तो फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर ही इन सारे स्थूल यज्ञों की स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है, जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं। उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इसी रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसे भी नहीं समझना है ये दादी दादियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आए, बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देख कई साहस करते हैं चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है तो उसे देख कोई को भी चढ़ने का साहस नहीं होता। तो हमारे कर्म कितने इम्पोर्टेंट है, है ना। जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देख कहीं साहस करते हैं चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है तो उसे देख कोई भी चढ़ने का साहस नहीं होता किसी का भी। तो हमारे कर्मों की गति कैसी है, जैसे कल हम पढ़ रहे थे वो अव्यक्त मुरली, उसमें मधुबन निवासियों का बाबा ने कहा था कि मधुबन गुंबज है, और मधुबन जब बाबा याद आता है तो मधुबन याद आता है, तो मधुबन निवासी याद आते हैं, है ना। तो मधुबन निवासियों के संकल्प ऐसे जो बहुत स्पीड से वातावरण में फैलते हैं। तो कर्मों की गति देखो कैसी, अगर मधुबन में रहते हुए अगर ऐसा कोई कर्म किया तो कितना बोझ चढ़ेगा। तो ये बात याद रखनी है कि अगर हमसे ऐसे कोई कर्म हो गया और हमको किसी ने देख लिया तो वो भी निराश हो जाएंगे। तो बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है, बहुत सेवा केंद्र पर चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है कि जिस कारण बहुत भूले होती रहती है। तुम सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना, तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती है, आदेश को प्रैक्टिकल में ना देख पीछे हट जाती है। सेवा भी एक की याद में ही करनी है। उनकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसे ऐसे शिक्षाओं से सजाया माँ ने कुछ समय के बाद विदाई ली। तो ये मम्मा के 10 संदेश थे। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद ये 10 संदेश चले। तो लास्ट एक महीने में हमने जितनी भी बातें रिवाइज की उससे कुछ मेन पॉइंट्स जो आज हम अपने साथ लेकर पूरा साल चलेंगे, तो उनमें से कोई विशेष बातें जो हमने बार बार सुनी मम्मा के बारे में कि मम्मा ने मुरली पर बहुत अटेंशन दिया है ना। कहते थे कि मम्मा जब बीमार थे तो भी मम्मा स्पीकर पर मुरली सुनते थे। मम्मा कहती थी कि मम्मा बहुत व्यस्त भी रहती थी तो मुरली जरूर सुनती थी, जरूर पढ़ती थी। और जैसे कहा कि मम्मा ने कहा कि जब आप मुरली सुनने बैठते हो तो शिव बाबा के मुख से निकले हुए वाक्य और आपके कान तक पहुंचने तक माया बीच में आती है, तो मुरली को बहुत रूहानियत और बहुत गंभीरता से सुनना है। बहुत गंभीरता से और रूहानियत से मुरली को सुनना है। दूसरा, मम्मा ने भोजन पर बहुत ध्यान दिया और लास्ट के संदेश में भी मम्मा ने भोजन पर ध्यान खिंचवाया कि ब्रह्मा भोजन का कितना महत्व है। मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी भोजन में। मम्मा भोजन करने आती थी, चुपचाप भोजन स्वीकार करती थी बाबा की याद में और चली जाती थी। कोई कमेंट नहीं होता था ब्रह्मा भोजन पर कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। तीसरी बात, मम्मा जब बीमार भी थी तो मम्मा ने एक बात कही कि हमारी बीमारी हमारी पुरुषार्थ और सेवा में विघ्न नहीं बने, हमारी बीमारी हमारी पुरुषार्थ और सेवा में बाधा ना बने, विघ्न ना बने, है ना। तो ये भी एक अटेंशन की बात है। चौथी बात, मम्मा ने एक बहन ने अपने अनुभव में लिखा है कि मम्मा सिखाती थी कि दिनचर्या, किसी और की दिनचर्या हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, हमारी वजह से किसी और की दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसमें एग्जाम्पल में जैसे हमने सुना था कि वो बहन कैसे लेट जाती थी भोजन के लिए और फिर उस माता को रुकना पड़ता था, तो सब कुछ डिले होता था क्योंकि ये अपनी भोजन पर लेट जाती थी, तो वो माता जो सेवाधारी आई थी परोसने वाली उनको रुकना पड़ता था। तो ये बात भी बहुत ध्यान देने की है कि हमारी वजह से ये ऐसा कोई कर्म ना हो, है ना। और मम्मा ने कहा था कि रोना नहीं है। मम्मा कहती थी कि रोने से आत्मा की सहन शक्ति घट जाती है, तो कभी भी रोना नहीं है। तो बाबा ने मम्मा से प्रॉमिस ली थी ना, तो मम्मा ने उस प्रॉमिस को हमेशा बनाए रखा कि कभी भी रोना नहीं है क्योंकि हमारी सहन शक्ति घटती है। एक शिक्षा में मम्मा ने कहा कि हमारा जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं लेकिन पोस्टकार्ड की तरह खुला होना चाहिए, है ना। लिफाफे की तरह बंद नहीं यानी कि अंदर बाहर अलग नहीं, कुछ छुपाने की हमको जरूरत ना पड़े इस दुनिया से, हमारे परिवार से। तो लिफाफे की तरह बंद नहीं लेकिन पोस्टकार्ड की तरह खुला होना चाहिए। नेक्स्ट, मम्मा ने कहा था कि कोई भी बात अगर होती है तो उसको वातावरण में फैलाना नहीं है, उसका वातावरण नहीं बनना चाहिए। तो ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। जब हम मधुबन में आते हैं तो मधुबन का इतना शुद्ध और पावरफुल वातावरण है, इधर कोने कोने में बैठ के हमको गॉसिप और ये सब नहीं करना है, नहीं तो इसका भी बोझ हम पर चढ़ेगा। एक और शिक्षा दी थी मम्मा ने कि जब कोई हमको कोई शिक्षा देता है तो हमारा मन उसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन मम्मा ने सिखाया कि अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो भले आपको उस समय ऐसे लगे कि ये मेरे काम की नहीं है, लेकिन मम्मा कहती थी कि उस शिक्षा को संभाल के रखो, आगे आपको उसके काम आएगा। तो कोई भी अगर हमको, हमारे बड़े हैं या हमारे जो मित्र संबंधी हैं, वो कुछ हमको कह रहे हैं तो डायरेक्टली मन उसको रिजेक्ट ना करे। तो ये भी बहुत ध्यान देने की बात थी। और मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, इस धारणाओं को हम भी लेके चले। कैसे मम्मा दो दो बजे उठ के पुरुषार्थ करती थी। देखो मम्मा बाबा तो फर्स्ट सोल है ना, लेकिन उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया तो वैसे ही हम बच्चों को भी उतना पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे मम्मा की बहुत सारी शिक्षाएं हमने लास्ट एक महीने में सुनी। तो आज के दिन अगर हमको मम्मा की प्यार का अगर रिटर्न देना है तो हम उन शिक्षाओं को धारण करें। आज के दिन कम से कम ऐसी कोई दो या तीन बातें उठा ले जो हमने सुनी और उस पर हम काम करें। ठीक है, ओम शांति।